नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत ने वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। प्रदेश में जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 1,75,000 से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया। बागेश्वर में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। और पौड़ी पुलिस ने जिले में CCTV की उपलब्धता, कार्यशीलता और रिकॉर्डिंग व्यवस्था की चेकिंग के लिए अभियान शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। भारत ने 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि देश में लगभग 30 अरब डॉलर तक स्मार्टफोन के निर्यात से प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात है। उन्होंने कहा कि 2015 से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने बताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसरों तथा युवाओं के दीर्घकालिक कौशल विकास के साथ 25 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में अभी तक 395 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3,22,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों में प्राप्त 32,000 से ज्यादा शिकायतों में से 22,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शिविरों के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए 43,418 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से 1,75,000 से अधिक नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनजन की सरकार जनजन के द्वार केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के साथ सरकार के विश्वास का सेतु है। इस पहल ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंचती है तो न केवल समस्याओं का समाधान होता है बल्कि शासन के प्रति जन विश्वास भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का ये अभियान उत्तराखंड में सुशासन की एक नई कार्य संस्कृति को स्थापित कर रहा है, जिसमें संवाद, समाधान और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक।
अल्मोड़ा जिले के सिमतोला, चितई, कसारदेवी, बिनसर, सोमेश्वर, रानीखेत और द्वाराहाट के कई वन क्षेत्रों में आग लगी हुई है। जिला अग्निशमन सेवा विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने कहा कि बारिश न होने के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम भी आग बुझाने में जुटी है और वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त फायर वॉचर्स की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सभी वन चौकियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
विंटर्स में जो बारिश होती है या हिमपात होता है वो इस बार हुआ नहीं है और ये काफी लंबा ड्राई स्पेल हो गया है। इस वजह से जो है वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमारी टीम एक्टिव है, हमारे साथ जो अन्य एनजीओ हैं, लोकल लोग हैं, उनका सपोर्ट है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हम लोग काफी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो फायर वॉचर्स हैं उन्हें भी कुछ संख्या में रख लिया है और उसके साथ साथ हम कंट्रोल बर्निंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ यदि कोई मिसक्रिएंट है जो जानबूझ के आग लगा रहे हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को भी लिखा है कि तत्काल कार्रवाई की जाए और इस क्रम में जिलाधिकारी काफी निर्देश काफी स्पष्ट है कि यदि कोई भी जानबूझ के आग लगाता है तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है। बागेश्वर में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के सहयोग से शिक्षकों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए विज्ञान और गणित के 60 शिक्षक और शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। शिक्षकों को गणित में प्रयोगात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल उपकरणों और शैक्षिक तकनीक का उपयोग, गणित और विज्ञान के आपसी संबंध तथा कक्षा कक्ष में नवाचार लागू करने की रणनीतियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डाइट बागेश्वर के प्राचार्य मनोज कुमार पांडे ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में गणित शिक्षण को नवाचारपूर्ण, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
आईसर पुणे के गाइडेंस में आईराइज का प्रोग्राम हमारे जनपद में चल रहा है विगत 2-3 साल से। तो इसमें जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है स्टेम लैब की अवधारणा के संबंध में ये प्रशिक्षण हमारा है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इन सब की जो शिक्षण की विधियाँ हैं उसको न केवल हम थ्योरेटिकली तो पढ़ाते ही हैं स्कूलों में, परंतु बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, कैसे क्रियाकलापों के माध्यम से वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखें, तो इस अवधारणा के साथ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी वर्कशॉप यहाँ 3 दिवसीय है, जिससे हमारे लगभग 60-70 शिक्षक लाभान्वित होंगे।
वहीं प्रशिक्षण में शामिल शिक्षक रीमा ने बताया कि समूह गतिविधियों, प्रायोगिक अभ्यास और प्रस्तुतिकरण सत्रों के माध्यम से शिक्षकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे अपने शिक्षण कौशल को और अधिक प्रभावी बना सकें।
ये जो प्रशिक्षण है वो जो आईसर पुणे आईराइज की तरफ से कराया जा रहा है, जिसमें मैथ्स और साइंस के जो टीचर्स हैं वो कंबाइंड इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। और इसमें स्पेशल बात ये है कि इसमें साइंस और मैथ्स को एक्टिविटी बेस्ड बनाया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, लर्निंग कर सके। हैंड्स ऑन, माइंड्स ऑन और एक्टिविटी बेस्ड बनाना इसका मेन मोटो है। और साथ में एक्टिविटी के साथ जो कॉन्सेप्ट है, ताकि बच्चे थोड़ा और इनोवेटिव होके उससे आगे जा सके, कुछ नए आइडियाज बच्चे ला सके, ये मेन फोकस आईराइज का रहता है और जो ये ट्रेनिंग है इसका भी रहता है।
पौड़ी पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुलिस टीमें ज्वेलर्स शॉप, प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और बैंकों में चेकिंग कर वहां सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति, रिकॉर्डिंग व्यवस्था, कैमरों की दिशा और कवरेज क्षेत्र की बारीकी से जांच कर रही है। जिन प्रतिष्ठानों या बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं पाए गए, उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा अभियान के दौरान पहले से लगे कैमरों को हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखने और पर्याप्त अवधि तक का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम की बैणी सेना ने राजस्व वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए नगर निगम की आय में इजाफा किया है। बीते 1 माह के भीतर बैणी सेना द्वारा 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई है, जिससे नगर निगम के राजस्व को मजबूती मिली है। आयुक्त परितोष वर्मा ने पूर्व में आयोजित बैठक में बैणी सेना को डोर टू डोर कूड़ा उठान शुल्क वसूली को लेकर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन्हीं लक्ष्यों के तहत बैणी सेना ने पूरे नगर निगम क्षेत्र में सघन अभियान चलाया और बेहतर परिणाम हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वर्ष 2025 में $47 अरब का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। प्रदेश में जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 1,75,000 से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया गया। बागेश्वर में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ। और पौड़ी पुलिस ने जिले में सीसीटीवी की उपलब्धता, कार्यशीलता और रिकॉर्डिंग व्यवस्था की चेकिंग के लिए अभियान शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।